नमः समय साराय सौरव क्या चकाश चित्त भावाय भावाय सरल भावान्तर।
31वीं गाथा चल रही है। आज थोड़ा सा कठिन विषय है, लेकिन पिछले 4 व्याख्यानों को आप याद करेंगे तो वो सरल लगेगा। आज के व्याख्यान के लिए जितना जरूरी है 2 मिनट में उसे दोहराता हूँ। जितेंद्रिय ये या एक संकर दोष का परिहार और प्रथम नंबर की स्तुति, 3 बातें इस गाथा में स्पष्ट की गई है। ये सारा जगत है और ज्ञायक अपना भगवान आत्मा है। उन दोनों को जुदा जुदा न जानकर और अपने आत्मा में अपनापन स्थापित नहीं करना, इसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। और दोनों को भिन्न भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपनापन स्थापित करना, इसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष परिहार। जितेंद्रिय माने इंद्रियां माने क्या, तो एक तो ये शरीर परिणाम को प्राप्त जो द्रव्य इंद्रियां हैं, ये आंख कान नाक, इन्हें तो इंद्रियां सारा जगत कहता ही है, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से जो पर पदार्थों को देखने जानने का प्रगत क्षेत्र का विकास है उसको बोलते हैं भावेंद्रिय। और इस द्रव्येंद्रियों और भावेंद्रियों के माध्यम से जो पर पदार्थ जानने में आते हैं उन्हें भी कहते हैं इंद्रिय। इस तरह इंद्रिय शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत हो गया। यहाँ की देव सास गुरु भी उसमें आ गए, लोकाकाश अलोकाकाश भी उसमें आ गए। आप सोच सकते हैं इंद्रियों के माध्यम से तो अकेले हम पौद्गलिक पदार्थों को ही देखते हैं, तो इसमें बाकी के जो अमूर्तिक पदार्थ हैं आत्मा और आकाश आदि द्रव्य वो कैसे आएंगे। इसमें 2 तर्क हैं। एक तो गे गायक शंकर दोष, वो गे है ना इसलिए आते हैं, और दूसरा ये है कि भले ही इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं आते हो लेकिन मन के माध्यम से उनका निर्णय होता है। अगर इंद्रियों मन के माध्यम से ही नहीं हो तो फिर उनका आत्मा का इंद्रिय ज्ञान से तो अनुभव होता है, ऐसा उनका अनुभव होता तो अनुभव तो होने से रहा। आखिरकार शास्त्र आधार से और हम मन से विचार कर तर्क से युक्ति से इनसे ही तो अपन उसका निर्णय करते हैं ना। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो अपने आत्मा को छोड़कर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर जितने पर पदार्थ हैं वे सभी गेयों में आ गए। और मूल तो यहाँ पर गेय और ज्ञायक के बीच भेद विज्ञान करना है। ये जुदे और ज्ञायक जुदा है। यहाँ गेय शब्द से कहा जा रहा है और दूसरी जगह इसी को देह शब्द से भी कहा जाता है। देह से क्यों कहा, देह माने भी गेय, देह माने अकेला ये शरीर नहीं, जैसे इंद्रियों माने अकेले आंख कान नाक नहीं, ज्ञान का वो क्षेत्रम भी इंद्रिय है और उसके द्वारा जानने में आने वाले पदार्थ भी इंद्रिय कहे जाते हैं। ऐसे ही देह माने अकेला ये नहीं शरीर, देह माने अगर कारमान शरीर लगा लो, तेजस शरीर, तीनों शरीर वो ही नहीं, लेकिन संपूर्ण देह का नाम, गे का नाम भी देह है। संतोष जी कभी सोचा, तो यहाँ पर अभी मैं प्रमाण दूंगा इसमें है संपूर्ण गे, कोई पदार्थ नहीं बचे। क्या प्रमाण है इसका, सीधा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा इनडायरेक्ट मिलेगा कि अपन 31, 32 और 33 गाथा तो इतनी सूक्ष्म है। जो जितेंद्री जिन, जितमोह जिन और छुनमोह जिन, यहाँ तक कि 12वें स्थान तक भी भगवान का भगत बताती है सपक्षणी में भी, वो गाथा के बाद जो कलश लिखा उसमें क्या लिखा देखे जरा। आपके पास है किताब? नहीं है तो बहुत बड़ी है। वो परंपरा तो गुरुदेव के साथ ही गई ना, अब तो आपको मेरे पे ही भरोसा करना पड़ेगा। देखिए 33वीं गाथा के बाद में एक कलश है, उसमें क्या कहा? इति परिचित तत्व रात्म कायी कितायाम नय विभिजन युक्त्या अत्यंत मुच्छादितायाम अवतरति न बोधो बोध में वाद्य कस्य सुरसदृष्टा स्फुटन्नेक एव। क्या था? यानी इतनी गहरी चर्चा करने के बाद आचार्य कहते हैं हमने तुम्हें क्या समझाया बताओ बच्चे, बोलते ना बन निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि हमने तुमको अभी तक सिर्फ इतना समझाया कि आत्मा जुदा है और काया जुदा। इससे सिद्ध हो गया ना कि जिन जिन को जुदा बताया वे सब काया है, ऐसा नहीं कहा गे गायक को जुदा जुदा बताया। इति परिचित तत्वई इस प्रकार माने 26वीं गाथा से लेकर और 33वीं गाथा तक, इति का मतलब इतना है। इति परिचित तत्वई जिन्होंने तत्व का परिचय प्राप्त किया है, उन्होंने क्या बताया कि आत्म कायिक तायाम आत्मा और काया की एकता के बारे में नए विभिजन युक्त्या नए विभाग की युक्ति से अत्यंत उच्छादित आयाम बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया। वहां कहा था नए विभाग अनभिज्ञोसी, 27वीं गाथा की उत्थानिका में क्या कहा था कि तुम नए विभाग को नहीं जानते हो इसलिए कहते हो कि यदि देह को आत्मा माने नहीं मानेंगे तो तीर्थंकरों की स्तुति बेकार हो जाएगी। अब कोई बात कहना कि हमने तुमने कहा था कि नए विभाग हमें समझाओ, तो अभी तक हम वही नए विभाग समझा रहे थे तब से, और यहां आके वो फुल स्टॉप लगाते हैं पूर्ण विराम लगाते हैं इति लिखकर कि हमने तुम्हें आत्मा और काया के बारे में नए विभाग क्या कहता है वो अच्छी तरह बता दिया। यानी 31-32वीं गाथा में वो यही समझा रहे थे कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। तो अब यहां पर बोलो शरीर का अर्थ गे हुआ कि नहीं हुआ? समस्त गे अपने आत्मा को छोड़कर, क्योंकि अपना आत्मा भी गे है ना, समस्त पर गे उसको कहीं देह बोलते हैं और कहीं गे बोलते हैं और यहां क्या बोल रहे हैं इस गाथा में इंद्री, उसी का नाम है इंद्री बोल रहे। देखो कैसे कहीं शब्दों का प्रयोग है रामचंद्र जी का, ये आपकी लौकिक डिक्शनरी से समय सारणी पढ़ा जा सकता। ये माने सारी दुनिया क्यों है यार, वेदांत में भी है यो अंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो अंडे, जो अंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो अंड में, अंड में ना स्थिति है, जो आपके शरीर के भीतर है वही ब्रह्मांड में है। और समझ लो जो भी सारी चीजें हैं उससे ज्यादा कोई सामग्री ब्रह्मांड में नहीं है, और इसमें भी तेरा भगवान आत्मा है ना, और ब्रह्मांड में भी भगवान आत्मा, उनके ब्रह्म एक अंड में तेरे शरीर में भी ब्रह्म है, सारे जगत में भी ब्रह्म के अलावा है क्या? जो अंड में है तो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वहां भी देह को यही कहा ना ब्रह्मांड सारा जगत। जब आचार्य कहते हैं देह जुदा आत्म जुदा वही तत्व को सार बाकी जो कछु और है याही को विस्तार, तो उसका अर्थ देह माने अकेला ये शरीर नहीं होता है, इस शरीर को तो मूर्ख से मूर्ख भी देह कहते हैं, इसमें क्या दम है। समय सार ये बात समझाने के लिए नहीं लिखा गया था, देह माने दुनिया, देह माने तेरे को छोड़कर जगत में जो कुछ भी है वो सब देह में आ गया, उसी को बोलते हैं इंद्रिय, उसी को बोलते हैं जी, तीनों एकार्थवासी है। ये बात समझे बिना समय सार का मर्म समझे ही नहीं जा सकता। क्यों साहब, आपने देह से भिन्न कहा, स्थूल बात करते हैं पंडित हुकुम दंत, हम देखो केवल ज्ञान से भिन्न कहते हैं, सूक्ष्म वाले हो गए, लेकिन देह में केवल ज्ञान आया कि नहीं आया बोलो। गुरुदेव का प्रवचन पढ़ना, उसमें सब लिखा है कि यहाँ पर इंद्रिय शब्द में देव सास गुरु ये भी आ गए, राय राग देश ये भी आ गए, गुणस्थान मांगना स्थान ये सब आ गए। आगे जाके कहेंगे अषटनी गाथा तक जाकर के वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जितने भी भाव हैं वो 29 प्रकार के गिनाए हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। उन सब का नाम है देह, उन सब का नाम है गेय, उन सब का नाम है इंद्रिय, इन जिन में से अपनापन हमें तोड़ना है। और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसका नाम है ज्ञायक, यद्यपि वो भी गेय है, तो उसे भी जानना है कि नहीं, उसे भी जानने में तो आना है कि नहीं है। हमारी क्या दिक्कत हुई है मालूम, आपने क्या गलती की हमने, पहले देखो, पहले माना कि देखो मैं तो ज्ञायक हूं, वो सारा जगत ये है कि आप भी समझा रहे हो, हम तो ठीक मानी कि नहीं मानी, इसमें एक खतरा पैदा हो गया मेरे अंदर, क्योंकि ये माने जानने लायक तो जगत है, मैं तो जानने वाला हूं, यानी मुझे तो जानने की जरूरत है ही नहीं, तो अपने को गेय में शामिल ही नहीं रखा तो उसे जानता कैसे, नहीं आए समझ में। सुबह से आपने एक कामों की लिस्ट बनाई, शाम को सोते वक्त बनाते कि नहीं बनाते हो, तो कल क्या क्या काम निपटाने हैं, तो उसमें कचहरी जाना, एक करना, एक केस लड़ना, बाजार में जाना है, बिजली का बिल जमा कराना है, नल की टोटी खराब हो रही वो सुधरवाना है, बहुत छोटे छोटे कामों की लिस्ट बनाते कि नहीं बनाते। तो उसमें लिस्ट में कहीं ऐसा भी होता है कि मुझे आत्मा का अनुभव करना है, कि आत्मा जानना, ये लिस्ट में होता है कि नहीं बता, नहीं होता। तो आज तक आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तेरी प्रायोरिटी की लिस्ट में ही उसका नंबर नहीं आया, ख्याल में आया ना, तो होता कैसे कि जबरदस्ती हो जाता। बोलो गुंजन जी साहब, हमारे यहां एक मीटिंग हुई समाज की, साहब समाज को क्या क्या काम करना चाहिए, महासमिति के क्या उद्देश्य होना चाहिए, सब लिखो ऊपर से नीचे तक बना बना करके। साहब महिलाओं का उद्धार भी, महिलाओं का क्या उद्धार, आदमी का क्यों नहीं कहना, अरे आप दहेज प्रथा ने कितना परेशान कर रखा, तो महिला उद्धार, साहित्य का उद्धार जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है, क्यों हरिजनों का उद्धार, इतने उद्धार आए, लेकिन आत्मोद्धार का नाम उसमें कहीं तो धर्म जी है, अपन तो सामाजिक, अपन तो सामाजिक, अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। जब वो पूरे उद्धारों की लिस्ट बन गई तो हरिजनोद्धार भी आ गया उसमें, अगड़े बगड़े सब, क्यों, लेकिन आत्मा नहीं आया। मैंने कहा भैया मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इन उद्धारों की यदि लिस्ट बनाओ और मेरे से बनवाओ तो सबसे पहले मैं आत्मोद्धार रखूंगा नंबर वन पे, और बाद में सारे उद्धारों का नंबर, और मुझसे नहीं बनवाओ तुम लोग बनाओ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अंत में तो आत्मोद्धार आ जाए, शुरू में नहीं तो अंत में, लास्ट में, तब तक मैं तुमसे समझौता करूंगा कि क्या करूं, तुम्हारा बहुमत है, लेकिन उस लिस्ट में आत्मोद्धार नाम का उद्धार रहे ही नहीं तो फिर मैं किसी कीमत पर समझौता नहीं कर सकता, चाहे समाज में रखो और चाहे बोलो। आप लोग भी अपने कामों की लिस्ट बनाते हैं ना ब्रह्मचंद जी साहब, उसमें कभी आत्मोद्धार आता है कि नहीं आता है, तो हमने गेयों की लिस्ट बनाई, गेय माने जानने लायक, जिन्हें हमें जानना है उसे गेय बोलते हैं ना, तो उसमें सारा लोकालोक आया, और भगवान आत्मा वो तो ज्ञात, वो तो जानेगा भाई साहब, क्यों, तो उसकी गेय में लिस्ट में नाम ही नहीं आया तो उसे जानने का सवाल ही कहां उठता है, प्रश्न क्यों नहीं किया तो जानने में आता कैसे। तो एक गलती हो गई कि ज्ञायक को हमने गेय में नहीं रखा, इसलिए गड़बड़ हो गई। अब गेय में रखना सर ऊपर, विष्णु सबसे ऊपर, कि गेय तो एक भगवान आत्मा ही है और दूसरा मेरे से लिस्ट बनवाओ तो कोई दूसरा गे जानने लायक जगत में कुछ है ही नहीं, और उद्धार करने लायक तो एक आत्मा ही है और कुछ उद्धार करने लायक क्या आपको पता नहीं है। सैकड़ों लड़कियां 25-25, 30-30 वर्ष की ब्रह्मचारी बैठी है, यदि हमने इसमें ध्यान नहीं दिया गया महिला के उद्धार पर तो 40-40 वर्ष तक की लोग ब्रह्मचारिणी बैठी रहेंगी, क्या अनर्थ हो जाएगा, क्या अनर्थ हो गया और क्या ब्रह्मचारी नहीं बैठी ना, ब्रह्मचारी तो आप पूजा करो ना, उन्हें प्रोत्साहन सुनो ना, ये तो अच्छी बात है, खराब क्या हो गया इसमें, खराब घबराना नहीं, पूरी बात आपका आपको अच्छी थी, आपको नहीं सचेगी तो ब्रह्मचारी होना खराब है, ब्रह्मचारी नहीं होना खराब है, यानी ये तो ऐसा है कि इसमें से कुछ निकलेगा तो रसोई निकलेगा, बिस्का निकलने वाला है, तो इसकी तुमको इतनी चिंता हो रही है। और ये जो आत्मा है जो अनंत काल से नहीं जाना गया इसलिए नरक निगोद में अनंत दुख उठाए हैं, और नहीं जानेगा तो अनंत काल तक और उठाएगा, इसको तेरे कोई नंबर ही नहीं ख्याल में आता। अरे जानने लायक है तो एकमात्र भगवान आत्मा है, थोड़ जगत पे से हटा दृष्टि, खेमचंद भाई बोला करते थे ना, कैसा पंडित जी आपने बहुत बढ़िया कह दिया, हमने तो नक्की कर लिया कि जानने लायक तो एक आत्मा ही है और कुछ नहीं है, तो जानेगा कौन कि आत्मा तो गेय हो गया, तो ज्ञायक कोई दूसरा होना चाहिए, तो ज्ञायक गुरु जी है, ज्ञायक इंद्रियां हैं, आंख कान नाक है, ज्ञान का क्षयोपशम है, क्यों अथवा वो ज्ञान पर्याय है, मैं तो अकेला ज्ञायक है, मैं तो गे हूं, कहते कहता हूं ना ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ सब कहता ना, तो अपन ने क्या किया उसे गे माना, उसका उसका ज्ञायकत्व छीन लिया, कितने दो पद, एक एक आदमी दो दो पद घेरे, ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है, वही प्रधानमंत्री और वही कांग्रेस अध्यक्ष कैसे चलेगा, हमारी पार्टी का राज आएगा निर्मलचंद जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, प्रधानमंत्री अलग होगा और कांग्रेस अध्यक्ष अलग होगा, तो वो तो ठीक है जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे लेकिन यहां तो नहीं चलने देंगे, हमने दो पद एक साथ नहीं, ज्ञायक भी मैं और गे भी मैं, पहले मैं ज्ञायक था सारा जगत गे था, जब गे था ही नहीं तो जानने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता था, और मैं गे बन गया तो ज्ञायक पर को मान लिया भगवान, अब अनंत भगवान जानेंगे मेरे को, वे ज्ञायक और मैं गे, तो अब मैं गे बन गया तो जानने का काम ही बंद हो गया, वो फैक्ट्री बंद हो गई जो जानने का काम करती थी मेरे में से, तो फिर आत्मा जानने में कैसे आएगा, जब जानने का काम चालू था तब आत्मा गे की लिस्ट में नहीं था, क्यों जब जब अपना आत्मा गे की लिस्ट में आया तो हमने जानने वाली फैक्ट्री बंद कर दी, इसलिए भगवान आत्मा आज तक जानने में नहीं आया। तो क्या करें कि तुम कांग्रेस की नीति अपना लो कि वही प्रधानमंत्री और वही अध्यक्ष, कि मैं ही गे और मैं ही जाए समझ लो, मैं कोई पार्टी भारती का नहीं घबरा रहा मैं, और हो तो चुनाव हो चुके हैं, जब प्रचार करने नहीं आया हूं, मेरे को तो उदाहरण जहां से मिलते हैं वहां से समेट लेता हूं रंजन जी, लेकिन मुझे समझाना तो ये है कि भाई तू ही गे माने जानने लायक महातत्व है और तू ही गाय, सिद्ध तक भगवान की जयमाला आती ना विधान में, सिद्ध तक मंडल विधान में सुना, तू महातत्व तू महागे, तू महागे शब्द भगवान आत्मा के लिए बार बार आता है, तू महाशास्त्र के मूल गे, तुम महाशास्त्र समय साथ ऐसे शास्त्रों के मूल गे, माने उनका वे तुम्हारे गीत गाते हैं अथवा वे तुम्हारे जानने का काम कराते हैं, वे गे हैं और तुम हो गाय, ख्याल में है कि नहीं है? तो अभी क्या कि दोनों पद अपने पास रख लें कि मैं ही गे और मैं ही गायक, कि ठीक है अब तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा कि भाई साहब ये गे मैं गे और मैं गायक जब दोनों ही मैं ही हूं तो ये भिन्नता की भिन्नभिनाहट अच्छी नहीं लगती है। हाँ भिन्नता की भिन्नभिनाहट माने क्यों भाई साहब आपकी दुकान आप कितने भाई हैं कि साहब क्या बताएं, आपका बड़ा भाई कि मैं ही बड़ा हूं और छोटा कि मैं ही छोटा हूं, कि बहन कि मैं ही बहन हूं और भाई के मैं ही भाई हूं, गजब हो गया। ऐसा जबलपुर में ही देखा हमने कि भाई भी वही और बहन भी वही और बड़ा भाई भी वही और छोटा भी भाई। इसका अर्थ क्या है? मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अद्वितीय हूं, ना मेरे से कोई बड़ा है ना मेरे से कोई छोटा है। क्यों? जब कोई है ही नहीं, दो है ही नहीं, दो में खटखट होती है ना, दो बर्तन हो गए तो फिर बचते ही है कि नहीं बचते हैं, एक में काहे की खचखच। तो जब तू एक ही है, तू ही बड़ा तू ही छोटा तू ही भाई तू ही बहन एक ही है, तो मैं ही बड़ा और मैं ही छोटा, इस बड़े छोटे की भिन्नता की भिन्नभिनाहट लाता ही क्यों है? इन मक्खियों की जरूरत कहाँ है इन विकल्पों की? जब तो मैं ही ज्ञाता और मैं ही गे, तो ज्ञाता और गे के विकल्प से भी क्या लाभ है? जहाँ ज्ञान ज्ञाता गे को न विकल्प बच भेद न जहाँ, न ज्ञान ज्ञाता गे का कोई विकल्प ही नहीं भेद ही नहीं, एक ही चीज है, तो ये झगड़ा खड़ा ही क्यों करना? क्या अब यहाँ क्या चक्कर हुआ है? ये रामायण 31वीं गाथा से क्या लेना देना है इसका? कि ये इंद्रियां थी गे और मान लिया हमने इनको ज्ञायक, क्यों? क्यों आंख देखती है और कान सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, तो ये हमने ज्ञायक इन्हें जानने वाला मान लिया। नहीं नहीं, जानता तो आत्मा ही है ना, लेकिन जानता तो इनके माध्यम से है ना, ऐसा ज्ञायक का सहयोगी मान लिया, तो ज्ञायक के पक्ष में हो गया ना। तो इसको बोलते गे ज्ञायक संकर तू, कहते पहले नक्की कर कि ये इंद्रियां गे हैं कि ज्ञायक। तो आचार्य कहते ये तो गे माने ये तो जानने लायक हैं, जैसे तो कोई रूमाल जानने लायक है, ये मकान जानने लायक है, ये सब दिख रहा ना जानने लायक है, ऐसे ही हमारे आंख कान नाक भी हमारे गे थे, ग्राहक थे, हमने मान लिया इन्हें मालिक दुकान का। ग्राहक कहो चाहे ग्यायक कहो, दोनों का एक ही अर्थ है। इस समय शायद में आगे आएगा, कहते ग्राहक शब्द आता है ग्यायक के लिए, ग्रहण करने वाला। तो ये ग्राह्य जिन्हें ग्रहण किया जाता है, ये इंद्रियां थी क्या? ये हमारे द्वारा जाने जानी थी और हमने इन्हें जानने वाले की पार्टी में मान लिया, कि थे मेहमान, हमने इन्हें घराती मान लिया, थे बराती, इन्हें मान लिया घराती, घराती को मान लिया बराती, तो क्या गड़बड़ होगी समझ लेना। क्यों साहब ऐसा कैसे हो सकता है? उनमें सील तो लगी नहीं है यदि घराती और बराती की, तो कैसे पता चला कि कौन घराती है और कौन बराती है? बोलो नरेंद्र जी, इसीलिए तो मेरे सील लगा देते है ना, जिसमें बराती आते हैं उनके गले में एक माला डाल देते हैं, जिसे पहचान में रह गए बराती है, लेकिन मिक्सर न हो जाए किसी पता लगेगा नहीं कैसे तरकी रहे, तो उनके गले में माला डाल दो, बिना माला वाले घराती और माला वाले बराती। चलो तो विचार करना गंभीरता से, मैं बात कहता हूं। एक दफा एक थूवन जी में पंच कल्याण था, बहुत पुरानी बात है, 30-40 वर्ष पुरानी बात होगी, 35 वर्ष पंच कल्याण था, और एक मीटिंग हुई समाज की, तो दहेज प्रथा पर मीटिंग हो रही थी, तो बहुत 2-3 घंटे चली, सब बोल रहे थे, कोई लड़के वालों को गालियां दे रहे थे, कोई लड़की वालों को गालियां दे रहे थे, लड़के वाले बहुत नालायक हो गए, लाखों मांगते हैं, कोई लड़की वालों को गालियां दे रहे थे, सबसे ज्यादा नालायक तो यही है। मेरे ये कहते हैं, बोले हमारी एक लड़के से 1 लाख रुपया में तय हो गया था हमारी लड़की का संबंध, लेकिन 1.25 लाख रखे उसके, बोलिए बेकार थे, तो ये बेकार जो है तो लड़की वाले, लड़के वाले थोड़ी बेकार थे, नहीं नहीं लड़की वाले नालायक, वो लड़के वाले नालायक, बस चला। फिर मेरे सुने पंडित जी आप बोलो बीच में, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता क्या बोलूं। ऐसा करो आप लोग कि इधर एक तरफ लड़की वाले बैठ जाओ और एक तरफ लड़के वाले बैठ जाओ, तो मेरी समझ में आ जाए कि लड़की वाले कौन है और लड़के वाले।
कर सकते हो आप जबलपुर में, कर सकते हैं
कौन है लड़की वाले और कौन है लड़के वाले। अरे ऐसा घर कहाँ है जिसके घर में न लड़कियां हैं और न लड़का है। हर आदमी लड़की वाला है और हर आदमी लड़के वाला है। लड़के वाले नालायक हो तो पूरी समाज नालायक है, और लड़की वाले नालायक हो तो पूरी समाज। काहे को गालियां देते हो अपने को, ये मुफ्त की झगड़ा क्यों खड़ा करते हो कि लड़की वाले और लड़के वाला। तुम समाज की बात करो ना, है कोई ऐसा कर सकते हैं कि लड़के वाले। कहने साहब मेरे अकेले चार लड़की लड़कियां हैं, इसलिए मैं तो पक्का लड़की वाला। दूसरा कहता नहीं मेरे तो लड़के ही लड़के हैं, इसलिए मैं लड़की वाला नहीं हूं। ऐसा नहीं है भाई साहब, तेरे चार लड़कियां हैं तो भी तू कभी लड़के वाला बन जाता है। क्यों? किसी पड़ोसी अड़ोसी की बारात में जाता है तो ये लोग क्या कहते हैं बोल, लड़के वाला हो जाता है। और जिसकी लड़कियां हो ही नहीं वो भी कभी कभी लड़की वाला बन जाता है कि नहीं? किसी की लड़की की शादी हो उसके कार्ड पर पहुंच गया तो वो लड़की वाला कहलाता कि नहीं? तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही आदमी डबल बन जाता है मेरे जैसा। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके जबलपुर में कोई शादी हो, अब मान लो आपकी लड़की इनके लड़के के साथ संबंध रखी हो जाए, तो क्यों भाई साहब दोनों जने मुझे कार्ड दोगे कि नहीं दोगे? देंगे ना। और मैं आऊं उस शादी में तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि दोनों ही जगह हाजिरी बजा दूं। थोड़ी देर लड़की वाले के पास खड़ा हो गया, बरागे बरात में शामिल हो गया तो यहां शामिल हो गया। क्यों? ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग होते हैं। ऐसे ये भगवान आत्मा एक गे का स्वरूप नहीं जानता है, इसलिए बहुत सा गे को गायक में शामिल कर लेता है और मिला के खाता है। कदम में गायक का अनुभव किया, क्या था उसमें? अनंत ज्ञान की पर्याय उलट उछल रही थी। क्यों? ये तो गे था, समझे ना। फिर उसमें ज्ञान क्या है? गे वो तुमने गायक मान लिया। उधर जाके तुम भगवान आत्मा में पर्याय उछलती दिखी, उछलती दिखी तो कह रहे भगवान आत्मा तो जो नहीं उछले उसका नाम है, जो उछलता है उसका नाम भगवान आत्मा है ही नहीं। क्यों क्या बोला भाई ये करे करे? वो जो थेउक्तम ज्ञान है उसका नाम तो इंद्री है, उसका नाम क्या है? भावेंद्री। और भावेंद्री और द्रविंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ, ये तीनों तो देह है, ये तीनों तो गे है, इन्हें तो इंद्रियां कहते हैं और तूने इन्हें आत्मा माना। इसको बोलते गे गायक शंकर दोष। ख्याल में था रंजन जी साहब से पता नहीं लगे उस गे दोष को हटाएंगे कैसे? गुरुदेव जैसा महापुरुष इस युग में पैदा नहीं होता ना, वे समय सार हमारा था और हम इसको दाब के रखे रहते सास भंडारों में, बाहर निकल के हवा तक नहीं लगने देते। क्यों? और कभी हवा भी लग भी जाती ना तो इसका मर्म जो है हमारे ख्याल में नहीं। मैं कभी कभी बहुत विचार करता हूँ गंभीरता से, यदि इस महापुरुष ने ये मर्म निकाल के नहीं बताया होता तो हम जैसे कितने पंडित हैं जो छाती पर हाथ ठोक के कह सकते हैं कि उनके सहयोग के बिना भी हम ये मर्म इसमें से निकाल लेते। नहीं निकालते। इस तरह से आप विचार करोगे तो उस आदमी की महिमा आपको ख्याल में आएगी। फिर काले झंडे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चरणों में लौटने की इच्छा होगी। लेकिन क्या करें, हमें इसके गहराई से विचारते ही नहीं, हम देखते ही नहीं कि इसका क्या अर्थ है। तिजोरी तो हमारी है लेकिन इधर चाबी खोल के तो देखो इसके अंदर क्या क्या माल रखा है, उसका तुम्हें खबर नहीं है कितना माल इसके भीतर पड़ा है। तो कहते थेउक्तम ज्ञान, ये थेउक्तम ज्ञान में मन पर ज्ञान तक का आ गया भाई साहब, ये सब गेय है, ये जानने लायक है, ये गायक नहीं, तू नहीं है, ये पर गेय है। मन पर ज्ञान तो गारंटी से पर गेय है। क्यों? वो तो आत्मा के जानने के काम भी नहीं आता, दूसरे के मन की बात जानता है। कितना बढ़िया ज्ञान होगा, इससे रद्दी ज्ञान दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। घबराना नहीं, रद्दी क्यों? इसलिए कि दूसरे के मन की बात जानता है। दूसरे के मन में कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। लोगों की वाणी थोड़ी बहुत पवित्र हो भी सकती है यश के लोभ में, यदि खोटा बोलूंगा तो दुनिया क्या कहेगी? क्यों? क्रियाएं थोड़ी पवित्र हो भी सकती हैं, क्योंकि ऐसा करूंगा तो लोग हाथ पैर तोड़ देंगे। क्यों? यानी हाथ पैरों की सुरक्षा के लिए काया कंट्रोल में रहती है। क्यों? और वाणी से अनाप शनाप बोला तो भी बिना मजदूरी दिए बाल बन जाएंगे। इसलिए जवान पे भी हम बहुत कुछ कंट्रोल रखते हैं, लेकिन हमारा मन में तो कितने खोटे भाव 24 घंटे 12 महीना आया करते हैं उसकी कल्पना की। एक जरा कल्पना करो, मैं कराता हूं आपको कि लोगों के मनों में जितना पाप है वो वाणी में आ जाता तो इस दुनिया में कोलाहल मच जाता, और काया में आता तो एक आदमी जिंदा नहीं बचता, और एक माँ बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। क्यों? ऐसा कौन आदमी है कि जिसको मारने का भाव किसी न किसी के हृदय में आज तक नहीं आया हो? क्योंकि वो वाणी में और काया में आ जाता तो कौन बचता? और ऐसी कौन माँ बहन है, बदसूरत से बदसूरत खूबसूरत की बात नहीं करता हूं, कि जिसे देखकर किसी न किसी नालायक का मन खराब नहीं हुआ हो? मिलेगी भाई साहब? नहीं मिलेगी। और यदि वो मन का पाप वाणी में और काया में आ गया होता तो क्या होता, कल्पना कर लो। तो हमारा मन कितना गंदा है इसी कल्पना आपको अंदाज लगा होगा। अब ये मन की बात जानने वाला ज्ञान के हाथ क्या लगेगा? ये समझ में? नीचे कोई चमकदार वस्तु पड़ी थी, सेठ जी ने फटाफट हाथ डांट दिया, तो मालूम क्या था? दूसरे आदमी ने खकार आया था, थूक दिया था। क्या हो गया? क्या है, क्या क्या बताए, क्या है? इस गेह में हाथ मारे तो यही गंदगी हाथ लगने वाली है। मन तो इससे कई गुना गंदा है। इस मन को जानने जाएगा तो उसमें क्या हाथ तेरे को लगने वाला, त्रिकाली ध्रुव थोड़ी दिखना है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके मन में त्रिकाली ध्रुव है, और विषय कसाय जिनके मन में है, ये सारा जगत है। अब ज्ञान क्या काम का? इसलिए मुनिराजों को जिनको वो मन पर ज्ञान होता है, ऐसे लाखों मुनिराज होते हैं जो सारी जिंदगी उसका उपयोग ही नहीं करें। क्यों करें? आपके घर में एक कोना ऐसा है जो सारी गंदगी का ढेर वहां डाल दिया जाता है, होता है? रसोई भी होता है एक कोना, क्या डस्टबिन बोलते, क्या बोलते आप? पूरा रखने का कोई बाल्टी माल्टी रखते कि नहीं रखते? तो उसे जाके कौन कौन देखता है? दिन में 24 घंटा कोई निगाह डालने की कोशिश करता है? एक ना हो तो ऐसा मुंह बांध के रूमाल से गंदी चीज को कोई देखना जानना पसंद नहीं करता। तो इतने गंदे मन को इतने पवित्र मुनिराज जानने देखने का काम क्यों करेंगे? क्यों जाने किसी के मन को? जानने में क्या रखा है, क्या फायदा है, बोलो अशोक जी? इसलिए भाई साहब उसको हमने ज्ञान मान रखा है। अरे वो तो गे, क्या कह रहे हैं? मन पर है ज्ञान भी गे, कैसे पंडित को बुलाया था? क्यों कह रहे हैं? देखो सेवोपम ज्ञान गे है, कह रहे कि नहीं कह रहे? शास्त्र के हिसाब से मेरी तरफ से है, भाव इंद्री गे है कि नहीं है? अकेले सब मन पर है ज्ञान तो भाव इंद्री नहीं। अरे भाव इंद्री माने संपूर्ण गे, बिंदी भाविंद्री मान ज्ञान के जो सेवोपम का प्रकार है, त्रिकाली ध्रुव को छोड़कर उस सारे गे में डाल देना, ऐसा आचार्य कहते, कुछ ऐसा भेदभाव नहीं रखना। क्या कह रहे? वो तो गे था और हमने उसे ज्ञान मान लिया, इसका नाम है गे ज्ञायक शंकर दोष। और सारे जगत पैसे दृष्टि हटाकर एक उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो ज्ञायक स्वरूप है, वो ज्ञात तो होगा, गे तो बनेगा हमारा, लेकिन कैसे ज्ञात होगा? ज्ञायक रूप से ज्ञात हो, गे रूप से ज्ञात नहीं हो, क्यों? गे तो अभी पर में चला जाएगा। मैं तो ज्ञायक हूं, मैं जानने देखने वाले के रूप में जो ज्ञात हुआ, ऐसा त्रिकाली ध्रुव वो मैं हूं और बाकी सब पर है। इसको स्वपर भेद विज्ञान भी कहते हैं। चार नाम हो गए, गे, इंद्रियां, दे और पर। पर का भी कोई है, पर कह दो, सुपर भेद विज्ञान कहो, तो देह और आत्मा का भेद विज्ञान कहो, तो इंद्रिय और आत्मा का भेद विज्ञान कहो, तो गे गायक का भेद विज्ञान कहो, एक ही बात। ये तो अब मैं समझता हूं, हम एक मुद्दे पर तो पहुंच गए कि एक द्रविंद्री भाविंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ ये सब गेय हैं, इंद्रियां हैं और इन्हें हमें जीतना है। अब कैसे जीतना उसकी बात करते हैं। थोड़ी सी बात तो पहले की थी कि जिन्हें हमें जीतना है पहले उसमें शत्रुता स्थापित करो, ये हमारी शत्रु है ऐसा नक्की करो। क्यों कि यदि तुम शत्रु स्थापित नहीं करोगे और उन्हें मित्र स्थापित करोगे तो फिर जीत नहीं पाओगे, क्योंकि जीतने के लिए जैसी निर्दयता चाहिए वो शत्रुता स्थापित हुए बिना वैसी निर्दयता होने वाली नहीं है। इसलिए ने कहा ना प्रज्ञा क्षेत्री स्थितेयम सात पात तई सावधानी, प्रज्ञा रूपी छेनी को डालना है और बड़ी निर्दयता से अलग कर देना। अधेम अधेम सब पढ़ा है कि नहीं, बड़ी निर्दयता से पर से जुदा करना है भगवान आत्मा को, क्योंकि तुमने जरा राग रखा तो जुदा होने वाला नहीं है। बेटे तुम चला जा, बेटे तुम चला जा, और मन दुलारती रहे दुलारती रहे, माथे पे हाथ भेज रहे, जाने वाला है बेटा, आंख बदल के बात करनी पड़ी, मैं तेरी मां भानी तू कह तय करूंगी, जाता है कि नहीं जाता तब जाएगा, आंख बदल के बात करनी पड़ेगी। ये इंद्रियों का साथ छोड़ना है ना, इन्हें पर में डालना है ना, तो पुचकार पुचकार के पर में नहीं जाएंगी, ये आंख बदल के बात करनी पड़ेगी, पहले इन्हें शत्रु घोषित करना पड़ेगा। जीतना है ना भाई साहब इंद्रियों को, हाँ जीतना है, अपर पार्टी में नक्की करो कि ये शत्रु पक्ष की है मेरे पक्ष की नहीं। कैसे भाई पैसा मैं कैसे मान लू, जिन आंखों से समय साथ पढ़ने को मिलता है उन आंखों को शत्रु मान लू, और जिन कानों से आपके प्रदूषण सुनने को मिलता है उन कानों को शत्रु मान लू, मेरे से तो नहीं होगा, नहीं होगा तो संसार में निखड़ोगी आसानी के लिए। ये नाक कान ये दूसरी पार्टी है ना जिसे तुझे जीतना है, खेल में दोस्ती निभाई तो उसका अर्थ यह है वो जीता तो तुम हारे। सब शत्रु को कैसे मारते, शत्रु दो लड़ रहे आप समझना, शेर और सुअर, शेर और सुअर कौन समझ गया ना, वो मुनिराज के उपसर्ग करता था ना, शेर खाना चाहता था और सुअर ने बचाया था तो शेर को मार डाला, सुअर ने मार डाला। एक बात आ गई थी सामने, पहले तो मुनिराज को बचाने का सवाल था लेकिन बाद में जब लड़ाई शुरू हो गई तो उसे नहीं मारे तो वो अपन को मार देगा। अब ऐसा नहीं है, दो में से एक को तो मरना ही पड़ेगा, अपन उसे नहीं मारेंगे तो घर में डाकू है, छाती पे हमारे पास बंदूक लगा रखी है और बदले में हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मार देगा। तो इंद्रियों को जीतना है तो यदि तुमने उन पर जरा भी करुणा रखी तो तुम हार जाओगे, वो इंद्रियां जीत जाएंगी। तो पहले तो नक्की करो कि शत्रु पक्ष में है, और कौन कौन है, द्रविंद्री भाविंद्री और इंद्री के विषय भूत सब पदार्थ, एक नक्की हुआ। और दूसरा जीतने का क्या मतलब है, जीते माने क्या, इन सबको आंख कान नाक को तोड़ डाले, एक सूरदास जी ने आंखें फोड़ ली थी ऐसा फोड़ डाले, हलो वो सूरदास जी की कहानी, सूरदास जी जनमान थोड़ी से सूरदास, ऐसी कहानी है जो तो किसी आंखों से देखकर किसी माँ बहन को देखा बहुत खूबसूरत थी तो मन में जरा गंदगी आ गई तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि नालायक आंखें नहीं होती तो ना मैं किस बहन को देखता और ना मेरे मन में ऐसा पाप आता, तो उन्होंने गर्म सुए करे और दोनों आंखें फोड़ दी। फिर तो उन्होंने आंखों से जीत लिया होगा, फिर तो उन्होंने कहते हैं सवा लाख पद लिखे हैं, यानी 5-6 हजार पद तो मैंने पढ़े हैं उसमें भी, क्योंकि तो मेरे एमए में सूरदास स्पेशल पोएट था, कभी था उसमें इतने कोर्स में नहीं है, सूर पदावली वगैरह 5-6 हजार पद, रोजाना 8 पद तो वे कम से कम बनाते थे, क्योंकि वे अष्टपहरी पूजा करते थे, अष्टपहरी हिंदुओं में पूजा होती है, हर पहर में भगवान की भक्ति करते हैं, और हर पहर में भगवान की भक्ति करने जाते तो एक नया भजन बना के ले जाते, किसी कभी जिंदगी में उन्होंने पुराने भजन से भगवान की भक्ति नहीं की, रोजाना 8 भजन 8 कम से कम, और ज्यादा बन जाए वो अलग, ऐसे उनके 1.25 लाख पद हो गए। तो उन सूरदास जी के साहित्य को मैंने पढ़ा तो उसमें इतना श्रृंगार रस है कि जितना शायद किसी के दूसरे में पाया जाए, आंखें फोड़ ली थे ऐसा रस कैसे लगा, कैसे छंद कैसे लिखे गए, क्योंकि आंखें फोड़ी ना उन्हें वो अंतिम दृश्य जिससे गुस्सा होकर के उन्हें आंखें फोड़ी थी उपयोग में वो ही जम गया और उसके बाद तो कुछ देखने को मिला ही नहीं। अपनी आंख है ना भाई साहब, मैं आपकी तरफ देखता हूं तो मेरी आंख की फोटो आपकी आंख में जाती है, कोई देख ले बगल वाला ध्यान से दिखेगी। और ऐसा है कि जब मुर्दा कोई हत्या करता है ना किसी की तो पुलिस जाके फटाफट उसकी आंख बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि जिसने हत्या की हो गला दबा उसकी फोटो उस आंख में होगी, यदि दूसरा व्यक्ति सामने आएगा तो उसकी फोटो आ जाएगी, उसकी निकल जाएगी और आंखें बंद कर दो तो उसी की फोटो रहेगी और भविष्य में उससे उस आदमी को पकड़ा जा सकता है। आगे फोटो जाती मुर्दे की अंत में वही आंखें रह जाती, जो अंत में जिसे देखा था वही आंखें में फोटो रह जाती है ना, वही ऐसी चित्र सूरदास की आंख में रह गया। तो सारी जिंदगी ऐसी ऐसी पंक्तियां लिखी कि मैं आपके सामने सुना नहीं सकता। जिनने पढ़ी है वो जानते हैं, जिन्हें नहीं पढ़ी वो जानने लायक कुछ है नहीं। सुनाने की क्या जरूरत है? चल रहे है ना। तो मेरे कहने का मतलब आंखें फोड़ने से तो ऐसी जीती जाती है, तो जीतने की विधि क्या? इन आंखों की इंद्रियों की तोड़ फोड़ करना ये इंद्रियों को जीतने की विधि नहीं है। तो क्या विधि है? कि इनसे काम लेना बंद करना, ना भोग का काम लेना ना ज्ञान का काम लेना, ये इंद्रियों से जीतना है। दंड बड़ो करतार को चित्त पे दियो, अपनी चित्त की गद्दी से उतार दो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। देखिए साहब, हम तो आपकी सेवा करेंगे, हम तो आपकी सेवा करेंगे, हमें तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। तो ये जानने का काम भी इन इंद्रियों से लेना बंद करना, उसका नाम है इंद्रिय ज्ञान की तिलांजलि। अब वो जो ज्ञान सीधा आत्मा से आत्मा को जानेगा उसका नाम है अतीन्द्रिय ज्ञान। इसलिए कहते हैं इंद्रिय ज्ञान हे है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपाधि है। प्रथम सारे बहुत आया, पहले कैसा लगा? अब इंद्रिय ज्ञान की निंदा करते हैं, निंदा नहीं बहुत जम के निंदा करते हैं, ऐसा शब्द लिखा है प्रथम सार में, पढ़ा संस्कृत में लिखा है। अत इंद्रिय सुख बत इंद्रिय ज्ञानम प्रणनिंदंती। अब इंद्रिय सुख के समान इंद्रिय ज्ञान भी हे है ऐसा कह के उसकी निंदा करते हैं, नहीं जमकर निंदा। प्रा प्रा उसमें लगाना, प्रधान दान से प्रधान बहुत महान हो जाता है ना, उत्कृष्ट, जम के निंदा करते हैं ऐसा लिखा। क्यों? कि जम के निंदा नहीं करेंगे तब तक तुम उसका पल्ला छोड़ने वाले नहीं हो, करें क्या? ये इंद्रिय ज्ञान भी गे है, तू इसे गायक की पार्टी में मत रख, इसे जानने वाले की पार्टी में मत रख। बोलो भाई साहब, सच बोलना छाती पे हाथ रख के, भैया इन्हें तो आंखें ही सब कुछ है, आंखें चली गई तो खत्म जिंदगी, फिर क्या? तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, बोलते कि नहीं बोलते। इसका मतलब तूने आंखों को ही जीवन माना, माने आत्मा माना, आंखें गई तो सब कुछ गया, ऐसे ही माना। अरे तेरा ही पूरा भगवान आत्मा तो विद्यमान है ना। बोलो हम सब में ऐसे लोग नहीं है कि आंखें गई तो सब कुछ गया? किसी कीमत पे आंख बचनी ही चाहिए, समय सार और आंख दोनों खतरे में पड़ जाए तो आप किसे बचाओगे? सच बोलना, समय रहा तो 20 रुपया में दूसरा मिल जाएगा, और जब आज कीमत होगी तो 10 रुपये में मिल जाएगा, आंखें कह रखी तो ये। अरे समय सार माने अपना भगवान त्रिकाली से भगवान आत्मा, और आंखें माने इंद्रिय जड़। हमने इन आंख को ही सर्वस्व मान रखा है कि नहीं? और धर्म के नाम पर हम इसे समय सार पढ़ने को मिलता है कि कानों को, भाई तू ये जो ज्ञान है इंद्रिय ज्ञान वो गे में है, वो ज्ञायक नहीं है, वो तू तो ज्ञायक है इनसे भिन्न। इसमें का अधिक जाने आत्मने, माने आत्मा को इनसे भिन्न जाने, इंद्रियों से आत्मा को भिन्न जाने, इसका नाम इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों को और कुछ नहीं करना, क्यों? इनकी सेवा अस्वीकार करना ये इंद्रियों को जीतना है। पंडित साहब मेरे लायक से, मेरे लायक से नहीं साहब, कुछ नहीं, जब होगी तो बताएंगे, नहीं होगा नहीं साहब मेरे तो कुछ नहीं, हाथ जोड़ता हूँ अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका नाम जीतना है, क्या का नाम जीतना है? कि इंद्रियों का कोई संयोग ज्ञान में होता है ऐसा मानना ये ज्ञान की हार है और इंद्रियों से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, इंद्रियां तो एक ज्ञान की गेय है, ऐसा मानना ये इंद्रियों को जीतना है। अब इन्होंने कहा विधि क्या है, जो विधि के बारे में पढ़ते हैं, अनाद अमर्याद रूप बंद पर्याय के बस जिसमें समस्त पर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येन्द्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया तो यह तो द्रव्येन्द्रियों का जीतना हुआ। आया कुछ ख्याल में, पंजाब में जैसा निकल गया, कुछ समझ नहीं है। पहले देर होकर यहां से शुरू करो, अनाज अमर्याद बंध पर्याय के बस, अनाद काल से यह आत्मा और ये कर्म का बंधन मूल राग देश का विकार अनादि काल से ही है, ये नया पैदा नहीं हुआ और ये मिथ्यात्व आदि सारी चीजें इनके बस होकर क्या हुआ कि वेद विज्ञान अस्त हो गया है। अस्त हो गया माने क्या, इंद्रियां और भगवान आत्मा इन दोनों के बीच में जो जुदाई है वो हमें दिखाई ही नहीं देती है, वेद विज्ञान अस्त हो गया है। ऐसा ये भगवान आत्मा अब द्रव्येन्द्रियों को जीतना है तो क्या करे, जरा समझना। ये जो पलंग बनते हैं ना आजकल पलंग, ये कारीगर इतने चतुर होते हैं कि जहां उनका जोड़ लगा ना उतनी सफाई से जोड़ते हैं और उसके ऊपर मसाला मसाला पोत देते हैं कि आप पता ही नहीं चलते कहां से जुड़ा है, वो जोड़ आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। क्यों, पलंग बनाया तो जोड़ दिखाई नहीं देता, ये कैसे बना होगा। अरे पंडित जी इसमें क्या है, इतनी बड़ी लकड़ी ली होगी, जो मूर्ति को कोल कोल के बनाते हैं ना, ऐसे कोल कोल के ये पलंग बनाया होगा, जान बुझे कर बुझ के और न बुझे कोई, यही बात करता है कि इतनी बड़ी लकड़ी को कोल कोल के बनाया जा सकता है, भगवान की मूर्ति नहीं है ये, कई लकड़ियां जोड़ जोड़ के बनाया गया है लेकिन दिखता तो है ही नहीं कहीं, ये चमड़े की आंख से नहीं दिखेगा, ये जोड़ विवेक की आंख से दिखाई देगा। तो कहां जुड़ा है, जहां सियाराव पार्टी मिलते हैं ना, जहां मतेवा पतिया पार्टी मिलते वही जोड़ होंगे, नहीं दिखे तो नहीं दिखे लेकिन गारंटी से वहां जोड़ वो विवेक की आंख से दिखता है कि नहीं दिखता है। ऐसी देव और आत्मा ऐसे मिक्सर हो रहे हैं कि चमड़े की आंख से देखो बेटा तो दिखाई नहीं देगा, तो कैसे दिखाई देगा, विवेक की आंख से दिखाई देगा। इनमें जोड़ है अवश्य, क्योंकि एक तो एक ज्ञानानंद स्वभावी है और एक जो जड़ स्वभावी है, इसमें लिखा है जो कच्चा से वो जोड़ को कैसे पकड़ना, आंख से नहीं पकड़ना, कैसे पकड़ना, विवेक से पकड़ना कि ये जहां मोड़ है वही जुड़ा होगा, सीधी सीधी पार्टी में बीच में जोड़ नहीं तो कौन सा विवेक है। देखो इसमें लिखा है आत्मा के साथ एक में एक हो रही है, भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येन्द्रियां। द्रव्येन्द्रियां क्या है, इनका एक नाम क्या है, शरीर। शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येन्द्रियां, ये आंख का नाम, स्पर्शन, ये सब क्या है, इनका एक नाम बोले तो क्या है, इनका शरीर परिणाम को प्राप्त जो द्रव्येन्द्रियां हैं उन्हें कैसे जीतना, जीतना माने भिन्न जानना, भिन्न करना नहीं, भले ही करना लिखा हो घबराना नहीं, आत्मा का करना जानना ही है, भिन्न जाना उसी का नाम है भिन्न करना, लिखा तो उसमें करना है घबराना नहीं, भिन्न जानना इसका नाम है जीतना। तो कैसे जीतना, कि ये तो शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येन्द्रियां हैं और भगवान आत्मा कैसा है कि वो चैतन्य स्वाभाविक निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, अंदर में जो चैतन्य स्वभाव है प्रगत अति सूक्ष्म, प्रगत भी है और अत्यंत सूक्ष्म भी है भगवान आत्मा, तो उसको और शरीर को इन दोनों की भिन्नता निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से, चतुराई कहां लगाना, निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता में सारी बुद्धि लगाना तो तेरे को द्रव्येन्द्रिय का जीती जाएगी।
साधारण ये जुदा और मैं जुदा वो भेद समझ लेना कि यहां से है। ये जो लकड़ी फाड़ता है ना मजदूर, जोर जोर से चोट मारने से कोई लकड़ी नहीं फटती है। कैसे फटती है कि उसमें एक संधि होती है, उसमें कहीं छेद होता है ऑटोमेटिकली, तो गीली होती, गीली से सूखती है, तो सूखती है तो वो फट जाती है। वो फटी जगह में वो लगा देना छेनी और उसमें ठोकर मारना दो टुकड़े हो जाएंगे बहुत कम मेहनत में, और बेसी तू मारता रहेगा कुछ हाथ लगने वाला नहीं, थक जाएगा। तो पहले वो छेद देखना, आत्मा और शरीर के बीच में गारंटी से कहीं ना कहीं धारा संधि पड़ी है, वो संधि को तू देखना और संधि में तू भेद विज्ञान की छेनी डाल देना तो संधि कैसे दिखेगी कि निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता। तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता कैसे होगी कि ये जो इंद्रियां हैं, जड़ हैं, रूप रस गंध स्पर्श है, जो गे है वो पर, और जो जानने वाला तत्व है वो मैं। लिखा इसमें कि आत्मा का क्या पहचान, लिखा प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से। प्रगत है और अति सूक्ष्म है, ऐसा जो चैतन्य भगवान आत्मा है उस स्वभाव को पकड़ लेना कि ये मैं, और ये जिसमें नहीं पाया जाए वो मैं नहीं, और इसकी भेदाभ्यास करके और उसमें प्रवेश कर लेना तो वो इंद्रियों को दृप्त जीत देना। इतना जान लिया कि ये मैं नहीं, बस इसी का नाम है जीतना। क्या समय तो हो गया, लेकिन एक सेकंड में खत्म करता हूं। सुनना, अपना लड़का किसी ऐसे दोस्त के चक्कर में पड़ गया जो उसे फंसाकर उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहता है, लेकिन वो उसे परम मित्र समझता है। क्यों? अब उसके दोस्त से अपने बच्चे की संपत्ति बचाने का क्या उपाय है? बोलो, दोस्त को मारना पीटना, अपने बेटे को मारना पीटना, क्यों? उस दोस्त की निंदा करना, उस दोस्त को घर में नहीं घुसने देना, जो जो तुमने ये किया तो उसकी दोस्ती और गहरी होगी और तेरी बात भी सुनेगा नहीं, और फिर वो तेरे घर में से उठा उठा के उसे घर में रखेगा सब सामान, क्योंकि तुम्हें तुम लुटेरे दिख रहे हो उसे। तो ये उपाय नहीं है। में क्या उपाय है? किसी भी तरीके से उस बच्चे के दिमाग में आप ये लगा दो कि ये तेरी संपत्ति को हड़पने की वजह से सारी दोस्ती है। क्यों? अब कैसे लगा सकते हो ये तुम जानो, लेकिन ये पता लगाओ यही उपाय है कोई।